पिछले चैप्टर में आपने देखा कि किचन में खड़ी इनाया परेशान हो रही थी। मिस्टर एंड मिसेस देशमुख ने कायरव से कहा कि उन्हें इनाया के बदले 1 करोड़ रुपए चाहिए। कायरव ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इनाया को अभी इसी वक्त लेकर जाएगा। कायरव के गार्ड्स ने देशमुख दंपति को घेर लिया, जिसके बाद वो 50 लाख में सौदा करने के लिए तैयार हो गए। कायरव ने डील के पेपर्स पर साइन करवाए, जिसमें लिखा था कि देशमुख दंपति ने अपनी मर्जी से इनाया को कायरव को सौंपा है और अब उनका इनाया से कोई रिश्ता नहीं है। कायरव ने इनाया को तैयार रहने के लिए 1 घंटे का समय दिया और वहां से चला गया। इनाया ने देशमुख दंपति पर गुस्सा किया, लेकिन सविता जी ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और प्रकाश जी ने उसे धमकी दी। अब आगे करेक्ट 1 घंटे बाद एक न्यू चमचमाती कार इनाया के घर के सामने खड़ी थी, जिसे देखकर पड़ोसियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। खुद सविता जी ने जब कार देखी तो इनाया की किस्मत से जलने लगी। इनाया सामान पैक करके तैयार थी। दिखावे के लिए उसका नाटक जारी था कि वो खुश नहीं है, उसे ज़बरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। अपनी नाराज़गी और गुस्सा दिखाते हुए उसने मिस्टर एंड मिसेस देशमुख से बात तक नहीं की, उनकी तरफ देखा तक नहीं। इनाया जैसे ही बैग लेकर बाहर निकली, ड्राइवर ने आगे बढ़कर उससे सामान ले लिया और ट्रंक में रख दिया। किस्मत वाली है तू, जो तुझे इतना अमीर और चाहने वाला पति मिलने जा रहा है। मुझे तो तेरे बाप ने कभी मोटरसाइकिल पर भी नहीं बिठाया। देख तेरे पति ने तुझे लेने कितनी बड़ी गाड़ी भेजी है, खुश रखना उसे, समझी? सविता जी ललचाई नजरों से कार को घूरते हुए इनाया को समझा रही थी, जिसका चेहरा सपाट था। इनाया ने हिकारत भरी नजरों से उन्हें घूरा और कार में बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत ही कार स्टार्ट की और चंद मिनटों में वो उस चौल से बाहर निकल गई, जहां उसने बचपन से लेकर जवानी तक का सफर तय किया था। कार अपनी रफ्तार से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। उसकी बैक सीट पर बैठी इनाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी आंखें बंद की और सर सीट के बैक से टिका दिया। रास्ता कटा पर इनाया यूं ही बैठी रही। वो किन्हीं ख्यालों में खोई थी, जब एक मर्दाना आवाज उसके कानों से टकराई। मैडम, हम पहुंच गए हैं, आप बाहर आ जाइए। इनाया ने चौंकते हुए आंखें खोली, नजरें आवाज की दिशा में घुमाई। ड्राइवर डोर खोले खड़ा उसके बाहर निकलने का वेट कर रहा था। इनाया हड़बड़ाते हुए सीधी हुई और अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकल गई। जैसे ही नजर सामने गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह हैरानी से खुल गया। ओह गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल। ड्रामाज में अमीर लोगों के घर को जैसा दिखाते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना बड़ा विला मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनाया की आंखें जुगनू जैसे चमकने लगी। ड्राइवर उसका लगेज लेकर आगे आगे जाने लगा और इनाया चारों तरफ नजरें घुमाते हुए अम्यूजमेंट से हर चीज देखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। गुड मॉर्निंग मैडम। अंदर कदम रखते ही एक 22-23 की लड़की इनाया के सामने आ गई और सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। इनाया पहले तो चौंक गई, खुद को लाइफ में पहली बार इतनी इज्जत मिलते देखकर हैरान रह गई, पर अगले ही पल उसके लबों पर हल्की मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, इनाया ने सौम्यता से जवाब दिया। मैडम, मैं आशा हूँ, यहाँ की केयरटेकर। सर ने आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं 24 घंटे यहीं रहती हूँ, वो साइड वाला रूम मेरा है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मुझे बता दीजिएगा। इनाया ने सर हिला दिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि ड्राइवर वापस वहाँ आ गया। मैडम, मैंने आपका सामान रख दिया है, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। सीढ़ियों के बाद वाला कमरा आपका है और उसके साइड वाला सर का। इनाया ने सर हिलाया और झिझकते हुए सवाल किया, आपके सर कहाँ हैं? सर तो ऑफिस में होंगे। ओह, तो कब वापस आएंगे? वो तो शाम को ही वापस आएंगे। यहीं आएंगे? मतलब वो खुद भी यहीं रहते हैं? उनकी फैमिली, यहाँ कोई और देख नहीं रहा तो बस, इनाया ने अटकते हुए कहा, पर फिर चुप हो गई। आगे क्या कहे उसे समझ ही नहीं आया। मैडम, ये सर का प्राइवेट विला है, यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं। सर की फैमिली रायचंद मैंशन में रहती है, सर भी वहीं रहते हैं, कभी कभी ही यहाँ आते हैं। ओह, इनाया आगे भी कुछ पूछने वाली थी पर पूछते पूछते रुक गई, होंठ कसमसाते हुए वापस बंद हो गए। ड्राइवर परमिशन लेकर चला गया। मैडम, आप कुछ लेंगी? नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं खुद बता दूंगी, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। ओके मैडम, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो बस एक बार बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। इनाया ने हामी भरी और सोचते हुए कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। गेट खोलते हुए जैसे ही इनाया ने रूम में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह हैरानी से खुल गया। इतना साफ सुथरा और खूबसूरत कमरा, जो किसी सपनों की हसीन दुनिया जैसे लग रहा था। वहां की हर चीज चीख चीख कर उसे बता रही थी कि उसकी औकात नहीं इस कमरे में कदम भी रखने की। इनाया ने बेडशीट को देखा, जो उसके कपड़ों से ज्यादा साफ और नहीं थी। क्या मैं सच में ये सब डिजर्व करती हूँ? नहीं, ये सब कुछ, ये रिस्पेक्ट सब तेरे लिए नहीं, कायरव रायचंद की बीवी के लिए है। ये सब जो भी तुझे मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि तेरे साथ कायरव का नाम जुड़ रहा है, वरना तेरी औकात नहीं कि तुझे ये सब मिले। लेकिन मुझे यहाँ इस अनजान जगह भेजकर वो खुद कहाँ है? और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे यहाँ छोड़ने तो आना चाहिए था उसे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती थी उसकी, पर उसने तो ड्राइवर और कार भेजकर छुट्टी पा ली। एक बार पूछा भी नहीं मुझसे कि मैं ठीक से पहुंची भी या नहीं। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इनाया ने नाराजगी से गालों को फुलाया और पॉकेट से फोन निकालकर सीधा कायरव को कॉल लगा दी। कुछ ही रिंग्स के बाद कॉल रिसीव हो गई और कायरव की अट्रैक्टिव डीप वॉइस इनाया के कान से टकराई। हेलो, बोलो, कैसे कॉल किया तुमने मुझे? कोई काम था? मुझे तुमसे कोई काम वाम नहीं था, पर तुम हो कहाँ? एक तो तुम सुबह मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, एक घंटे बाद ड्राइवर के साथ कार भेजी पर खुद नहीं आए मुझे लेने, और जब मैं यहाँ तुम्हारे विला पहुंची तब भी तुम नहीं मिले। तुम्हें नहीं लगता कि एटलीस्ट यहाँ तो तुम्हें प्रेजेंट होना चाहिए था? और कुछ नहीं तो मुझे एक कॉल करके बता ही देना चाहिए था। तुमने तो मुझे सुनसान विला में अनजान लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया। एक बार कॉल करके ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक से पहुंची भी या नहीं? मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मैं यहाँ गेस्ट हूं ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा ख्याल रखना, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितना अजीब लग रहा है यहाँ, और मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ जल्दी से आते भी नहीं, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? देखो, मैं नहीं रहूंगी इतने बड़े विला में अकेले, मुझे आदत नहीं है। तो मेरे साथ रह लोगी? इसकी आदत है तुम्हें? इनाया का टेप रिकॉर्डर बंद होते ही कायरव ने ठेसी आवाज में सवाल किया। इनाया पल भर को चौंक गई, अगले ही पल सक पकाते हुए बोली, नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मेरा घर तो बहुत छोटा था और यहाँ अभी मैं किसी को जानती तक नहीं। वैसे तो तुम भी मेरे लिए अनजान ही हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा तो जानती हो ना, और तुम मुझे यहाँ लाए हो तो तुम्हें तो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था, बस इसलिए। कायरव के लब हल्के से खिंच गए। जानती नहीं तो जान जाओगी, मुझे भी और वहां मौजूद लोगों को भी। बस उसके लिए तुम्हें मेरे और उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी, क्योंकि अगले कुछ दिन तुम्हें वहीं रहना है। तुम नहीं आओगे क्या यहाँ? जब तुम्हें आना ही नहीं था तो मुझे यहाँ इस भूत बंगले में क्यों भेज दिया? देखो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ अकेले, अगर तुम्हें नहीं आना तो बता दो, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी।
अब तुम तब तक वहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहता। अभी कहा ना मैंने कि तुम्हें अगले कुछ दिन वहीं बिताने हैं? मैं अभी ऑफिस में हूँ, शायद आज ना आ सकूँ, और वैसे भी मुझे कंपनी हैंडल करनी होती है। मैं सारा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो तुम्हें ऐसे ही रहने की आदत डालनी होगी। फिर तुम वहाँ अकेली तो नहीं हो, और बस आज आज की बात है, कल से तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी, इतनी बिजी होगी तुम। मैं किस चीज़ में बिजी होंगी? इनाया ने चौंकते हुए सवाल किया। वो भी तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। कायरव का यूं सस्पेंस रखना इनाया को जरा भी पसंद नहीं आया, और उसने मुंह बना लिया। टू बी कंटिन्यूड।